भाग दो। पहला शीर्षक ग्राम चीता। अब कथावाचिका महिला ग्राम के पटेल का वर्णन करती है। ग्राम के पटेल को लोग ग्राम का चीता के रूप में जानते हैं, क्योंकि वह शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी एवं ग्राम में एक विशेष प्रभुत्व रखने वाला व्यक्ति है। ग्राम में उसके आदेश की अवहेलना करने का साहस किसी में भी नहीं है। कथावाचिका कहती है, वह हमारे मध्य एक मोटा दृढ़ व्यक्ति एवं ग्राम का एक वास्तविक चीता है। उसकी तिजोरी में बहुत सोना है एवं वह अपने हाथों में भी सोने के ठोस कंगन पहनता है। उसकी तीनों बेटियां उसी के पास रहती है तथा उसके सभी दामाद उसके यहाँ गुलामों की तरह काम करते हैं। यद्यपि उसके दामादों के पास भी उतनी ही जमीन जायदाद है जितनी जितनी खुद उसके पास है, लेकिन आप जानते ही हैं कि वह ग्राम का चीता है। उसके द्वारा बोले गए शब्द ग्राम वासियों के लिए कानून के समान है। यदि पटेल कहे तो नारियल की पत्ती सोने की छत में परिवर्तित हो जाएगी। पटेल एक ईमानदार व्यक्ति है। उसने अनेकों बार गरीब कृषकों की सहायता की है। वह एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति है। यदि रंगे गावड़ा कहे कि नहीं, तो आपको नीम के कड़वे पत्ते खाने पड़ सकते हैं एवं शहर के दरवाजे पर सोना पड़ सकता है। यहाँ पर तुम्हें कुत्ते अपनी जीभ से चाटेंगे, लेकिन यदि रंगे गावड़ा कहे हाँ, तो आपको हाथी के पीठ पर बैठना पड़ सकता है एवं जुलूस में संगीत वाद्य यंत्र बजाना पड़ सकता है। कांथापुरा में तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि उसमें पटेल रंगे गावड़ा की सहमति न हो। फिर भी गावड़ा एक ईमानदार एवं गरीब कृषकों की सहायता करने वाला व्यक्ति है। वह चापलूस एवं नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों एवं प्रभुत्व के कारण वह दूसरों के लिए एक लोककंटक है। अन्य शूद्र भी दरिद्र नहीं है, यद्यपि वह हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं एवं कोई भी राजस्व एवं अन्य कर समय पर नहीं चुकाते हैं। अगला शीर्षक बादे खान। बादे खान नामक सिपाही कांथापुरा में ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति का द्योतक है। कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा गांधी आंदोलन को खत्म करना ही उसका कार्य है। वह कांथापुरा में अपना जीवन यापन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से करता है। जब बादे खान कांथापुरा पहुंचता है, तो वह रंगे गावड़ा से एक मकान की व्यवस्था करने की विनती विनती करता है, लेकिन गावड़ा उससे उदासीन से व्यवहार करता है। पटेल बादे खान से कहता है कि उसे अभी किसी भी मकान के बारे में जानकारी नहीं है। बादे खान पटेल से कहता है, मुझे यहाँ पर सरकार ने भेजा है एवं मुझे रहने के लिए एक मकान की आवश्यकता है। इस पर रंगे गावड़ा जवाब देते हैं, एक मकान चाहिए, ठीक है, ढूंढ लो, मुझे तो किसी मकान की जानकारी नहीं है। कहने के साथ ही पटेल अपनी तंबाकू की डिब्बी खोलता है एवं सावधानी से उसमें से तंबाकू की पत्ती उठाता है। वह स्वयं बैठ जाता है। बादे खान को बैठने को भी नहीं कहता एवं अपनी धोती से तंबाकू की पत्ती को झाड़ता है तथा सुपारी के साथ उसे अपने मुंह में रखकर चबाने लगता है। तत्पश्चात वह बादे खान से कहता है, तो तुम्हें एक मकान चाहिए पुलिस साहब। मुझे अफसोस है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई मकान या कमरा नहीं है। लेकिन बादे खान कहता है, तुम सरकारी कर्मचारी हो तथा मुझे तुमसे एक मकान की व्यवस्था करने को कहने के लिए पूरा अधिकार है। सरकारी कर्मचारी, पटेल दोहराता है। जी हाँ, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन सरकार मुझे किसी पुलिस वाले के लिए मकान खोजने का वेतन नहीं देती है। मुझे यहाँ पर कर वसूली के नियुक्त किया गया है, पटेल ने कहा। इस पर बादे खान पटेल से गुस्से में कहता है, तो तुम अपने मालिकों के प्रति राजद्रोह कर रहे हो। मैं राजद्रोही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें कानून बता रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक इतने विद्वान वकील भी हो, बादे खान हंसता हुआ कहता है, फिर अंत में कहता है, तुम मेरे लिए एक मकान का प्रबंध करोगे अथवा नहीं? नहीं पुलिस साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके लिए मकान का प्रबंध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यदि गांव में कोई आपको कमरा आदि देने के लिए तैयार हो तो जाकर स्वयं ले लो, एवं फिर चाहो तो मकान को महल में बदल दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, पटेल ने कहा। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, बादे खान ने दांत चबाते हुए कहा। जब बादे खान यह जान जाता है कि गांव में कोई मकान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है, तो वो स्कैफिंगटन हाँ काफी स्टेट की ओर चल देता है, एवं वहां पर जाकर उसके प्रबंधक से मकान उपलब्ध कराने में उसकी सहायता करने की प्रार्थना करता है। प्रबंधक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बादे खान की सहायता करता है, क्योंकि यह पुलिस का सिपाही स्टेट में काम करने वाले श्रमिकों को संभालने में सहायक सिद्ध होगा। भाग 2 समाप्त।